November 4th morning.
Hai Tuhan Inamrat, Sakal Bela, Damodarasta, Samakta Paris. Tetapi Pratidin Kirtan Hobe. Ekparam Ami Bhakti Vinod Thakur Dwara Sankali Bhajan Rahasya Parva. Bhakti Vinod Thakur Grantha Mandya Bhajan Rahasya Ekti Vishesh Anand. जरा भजन करवा प्रयास, जो लोग भजन करना चाहते हैं जरूर सी भजन रहस्य को पा। भजन का रहस्य क्या है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, इसलिए इस भजन के रहस्य को समझना चाहिए। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिक्षास्त्र जो महाप्रभु का स्वरचित आठ श्लोक है, उन आठों श्लोकों के अनुसार भी इसकी व्याख्या की। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन के लिए आठ याम माने दिन के तीन, रात के तीन, एक सवेरे एक शाम, ये आठ। वैष्णव लोग, हमारे रूपानुग वैष्णव लोग आठों याम में भगवान की जो जो लीलाएं हुई उसको अपने सिद्ध हृदय से स्मरण करते हुए भजन करते, उसमें ये बतलाएं कि कैसे हम लोग अष्टकाली लीला का स्मरण कर सकते हैं। निशांत लीला, प्रातःकालीन लीला, दोपहर से पूर्व पूर्वान्न लीला, फिर मध्यान्ह लीला, सायान्ह लीला और फिर प्रदोष लीला, फिर रात्रि नई और निशान, ये आठ लीलाएं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको आठ भागों में बांटा भजन को। सबसे पहले श्रद्धा साधु संघ के द्वारा, इसके बाद में भजन क्रिया आरंभ होगी, अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी। अनर्थ क्या है? हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है इसको भूल जाना ही अनर्थ है। इसी से जावती अनर्थ पैदा है। उस समय में धन में, संपत्ति में, परिवार वर्ग में अशक्ति हो जाती है। मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं, और ये हमारे कुटुंबी जन हमारे हैं, ये रुपया पैसा संपत्ति है, इसी से सुख होगा। किंतु कदापि रुपये पैसे से कोई भी सुख नहीं हो सकता, कदापि नहीं, बल्कि उसमें आसक्ति होने से फिर जन्म होगा तो फिर कहीं सांप जन्म लेना पड़ेगा और कुबेर की तरफ में उसके ऊपर बैठ करके रक्षा करने लगते हैं। इसलिए धन का सदुपयोग करते हुए, जीवन निर्वाह के लिए करते हुए समझ लो, एक पैसा दबली भी तुम्हारे साथ में कुछ नहीं जाएगा और तुम्हारे परिवार का कोई भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए गधे के समान में परिश्रम न करके जीवन निर्वाह के लिए करो और जो कुछ भी करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का इन प्रकार से कहना है कि इनमें आसक्त न हो। ये आसक्त ही समस्त अनर्थों का मूल है। गुरु पदाश्रय करके भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होती है, इसके बाद में निष्ठा होती है, इसके बाद में चतुर्थ स्थल में रुचि हुई, रुचि के बाद में आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद में भाव हुआ छ, और आसक्ति के बाद में विप्रलम्भमयी प्रेम होता है और आठवें में संभोग रूपी प्रेम होता है। यही अष्टकालीय लीला में, राधा कृष्ण के नित्य मिलन में जो अष्टकालीय लीला है उसमें प्रवेश करने का अधिकार यही देगा ग्रंथ। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास करते हुए जाते भजन राज्य प्रवेश कर, भजन कक्षी ना पहले की हमें একটি নদী আছে, তার ধারা আছে, ধারার মধ্যে প্রবাহ থাকে। এই আজকের প্রবাহের মধ্যে এখানে যা দেখছ জল, ও দু তিন দিনের পরে কোথায় চলে যাবে? প্রয়াগ অপ্রয়াগ থেকে সমুদ্রে চলে যাবে। এই প্রবাহ ওইরকম আমাদের ভজনের প্রবাহ থাকে। ক্রমে ক্রমে আমি দেখব ভজন করেছি গুরু নিষ্ঠা হয়েছে কিনা, আমার অনর্থ গুলি ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে কিনা, আমার সংসারের প্রতি স্ত্রী প্রতি পতি প্রতি কোনো আসক্তি আছে কিনা এটা যাচাই করতে হবে। তারপরে দেখতে যে আমি নামেতে কি হরিকথা শুনে তো রুচি হয়েছে, তারপরে দেখবে যে আসক্তি হলো কিনা, বিনা হরিকথা শুনলে থাকতে পারে, সংসারিক আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয়ে যাবে, তৎপশ্চাৎ ভাব উদিত হবে, তারপরে ওই বিপ্লম্ব ভাব, তারপরে ওই অষ্টকালী লীলা সম্পূর্ণ উদিত হবে। এই জন্য ধারা প্রবাহ মধ্যে যদি আমাদের এটা না হয় তাহলে বুঝব যে গলত আছে। গলত কোথায়? দুই জায়গা, হয়তো গুরুর মধ্যে গলত আছে, আমাকে ঠিক ডিরেকশন দিচ্ছে না, অথবা আমার মধ্যে আছে। যদি ওই রকম গুরু থেকে আমার নিষ্ঠা রুচি সব আছে কিন্তু আমার উন্নতি হচ্ছে, তখন বুঝবে যে গুরুর মধ্যে কিছু দোষ আছে। তখন তাহাকে প্রণাম করে, তাহার আদেশ নিয়ে কোন শিক্ষা গুরু উন্নত তার কাছে যেতে হবে। আর যদি ওখানে ঠিক আছে আমার মধ্যে গলত আছে তাহলে এইটাকে সুধার। ক্রমে 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 একেবারে প্রেম অবস্থা তক পৌঁছা যা চেষ্টা কর, নচিক অন্তত ভাব অবস্থা তক এই মনুষ্য জন্মেতে পৌঁছে গেলে কোনো ক্ষতি তাহলে আর অনর্থে আবার আসবা সহজে। অতএব আপনারা খুব ভালোভাবে শুনবেন আর এটাকে পালন করবেন, এইটা জীবনের পুঁজি আপনার পকেটেতে হৃদয়তে নিয়ে বাড়বে।